क्या आप किसी ऐसी चीज का समर्थन कर रहे हैं जो आपका समर्थन नहीं करती? एक विशेष प्रकार की थकावट होती है जो बहुत अधिक मेहनत करने से नहीं आती। यह ईमानदारी से काम करने से आता है। अपनी ऊर्जा, अपनी वफादारी, अपना समय किसी ऐसी चीज में लगाने से जिसे कभी भी आपको वापस देने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, आपके लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं, आप जैसे लोगों को नहीं, उस समुदाय के लिए नहीं जहां से आप आते हैं, जिन मूल्यों के बारे में आप सोचते हैं या जिस भविष्य के लिए आप निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत घाव नहीं है, यह एक सामूहिक संकट है। वफादारी का भ्रम। हमें सिखाया गया है कि वफादारी एक गुण है, और यह तब होता है जब यह दोनों दिशाओं में बहती है। लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं वफादारी समर्पण के साथ भ्रमित हो गई। हमसे कहा गया था कि हम प्रदर्शन करते रहें, खरीदारी करते रहें उन प्रणालियों, संस्थानों, ब्रांडों, विचारधाराओं और संरचनाओं का बचाव करते रहें जिन्होंने एक बार भी पलटकर नहीं पूछा, क्या लोग मुझे बनाए रखते हैं? क्या वे वास्तव में मुझे बनाए रखते हैं? अपने चारों ओर देखो, कितने समुदाय उन व्यवसायों में अपना डॉलर डालते हैं जो उन समुदायों से किराया नहीं लेते हैं? कितने लोग उन पार्टियों को वोट देते हैं जो उन्हें वहीं बनाए रखने के लिए कानून पारित करती हैं जहां वे हैं? कितने कर्मचारी दशकों तक ऐसे निगमों को समर्पित करते हैं जो अपनी आजीविका को उसी क्षण दूर कर देते हैं जब एक स्प्रेडशीट यह बताती है कि यह लाभदायक है? कितनी संस्कृतियां लोगों से पैदा हुई कला, संगीत और संस्कृति का जश्न मनाती हैं और उनका उपभोग करती हैं, जबकि वही लोग आर्थिक रूप से अदृश्य रहते हैं? यह एक संयोग नहीं है, यह एक पैटर्न है, और पैटर्न पर हमारा ध्यान आवश्यक है। मरे हुए घोड़े को कोड़े मारना। एक पुरानी कहावत है, मरे हुए घोड़े को कोड़े मत मारो। इसका मतलब है किसी ऐसी चीज में प्रयास करना बंद करें जो आगे नहीं बढ़ सकती और न ही आगे बढ़ेगी। किसी चीज के मर जाने पर उसे स्वीकार करना क्रूर नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। क्रूरता अन्यथा दिखावा करने में है, अपने आप को और अपने समुदाय को उस चीज की वेदी पर थका देने में है जो आपको पहले ही विफल कर चुकी है। यह बात घोड़ों से कहीं अधिक पर लागू होती है। यह उन प्रणालियों पर लागू होता है जो आपको ध्यान में रखे बिना बनाई गई थी। यह रिश्तों पर लागू होता है, व्यक्तिगत, राजनीतिक, आर्थिक, जहां शर्तें कभी भी समान नहीं थी। यह उन आंदोलनों पर लागू होता है जिन्हें खोखला कर दिया गया है, उन संस्थानों पर जो शांत हो गए हैं, उन वादों पर लागू होता है जिन्हें कभी पूरा करने का इरादा नहीं था। सवाल यह नहीं है कि आपको आहत महसूस करना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि अब आप जो जानते हैं उसका क्या करेंगे, क्योंकि भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से किसी ऐसी चीज में निवेश करना जारी रखना जो आप में निवेश नहीं करती वफादारी नहीं है, यह आत्मविनाश है। और जब हम इसे सामूहिक रूप से करते हैं तो यह पीढ़ीगत आत्मोन्मूलन बन जाता है। हम द्वीप नहीं हैं। यहां बताया गया है कि व्यक्तिवाद खतरनाक रूप से गलत हो जाता है। यह आपको बताता है कि यह आपकी समस्या है जिसे आपको अकेले ही हल करना है। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो यह रणनीति या इच्छाशक्ति की व्यक्तिगत विफलता है। यदि आपका समुदाय संघर्ष कर रहा है तो यह स्वयं की सहायता करने में विफल होने वाला समुदाय है। लेकिन हम विजयी नहीं होते या अकेले नहीं पड़ते। हमारे पास कभी नहीं है। मानवीय गरिमा में हर बड़ी छलांग, अधिकारों का हर विस्तार, एक अन्यायपूर्ण ढांचे का हर विध्वंस, हर पल जहां अनदेखी निर्विवाद हो गई एक सामूहिक कार्य था। इसके लिए लोगों को अपने तात्कालिक आराम से परे देखने और कठिन प्रश्न पूछने की आवश्यकता थी, क्या यह हमारे लिए काम कर रहा है, हम सभी के लिए? नागरिक अधिकार आंदोलन व्यक्तिगत शिकायतों का संग्रह नहीं था। यह उस व्यवस्था का समर्थन जारी रखने से एक समन्वित सामूहिक इनकार था जो उनका समर्थन नहीं करती थी। श्रमिक आंदोलन का जन्म किसी थके हुए कारखाने के मजदूर से नहीं हुआ था। इसका जन्म उन हजारों थके हुए श्रमिकों से हुआ जिन्होंने अंततः कहा, हमारा सामूहिक प्रयास इस मशीन का इंजन है और हम अब अन्यथा दिखावा नहीं करेंगे। ऑडिट हमें अवश्य करना चाहिए। अब समय आ गया है व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से एक ईमानदार ऑडिट करने का। आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही है? हालांकि सिर्फ आपका पैसा ही मायने नहीं रखता, आपका ध्यान, आपकी वकालत, आपका बचाव, आपका भावनात्मक श्रम, आपका वोट, आपकी आवाज, आपकी चुप्पी, आप क्या बनाए रख रहे हैं? क्या आप किसी ऐसी चीज का समर्थन कर रहे हैं जो बदले में आपके समुदाय को बनाए रखे? या क्या आप किसी ऐसी चीज का समर्थन कर रहे हैं जो आपके समुदाय इसकी संस्कृति, इसके श्रम, इसकी संपत्ति, इसकी पहचान से निकलती है और उस मूल्य को अन्यत्र पुनर्निर्देशित करती है? यदि आप उस ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करें तो क्या परिवर्तन होगा? यह सब कुछ जला देने के बारे में नहीं है, यह उस चीज के साथ रणनीतिक होने के बारे में है जो सीमित है आपका समय, आपके संसाधन, आपकी सामूहिक शक्ति और इसे उस ओर निर्देशित करना जो वास्तव में बढ़ सकता है, जो वास्तव में वापस दे सकता है, जो वास्तव में कुछ ऐसा बना सकता है जो आप सभी का है। गलत वफादारी की कीमत, लागत अमूर्त नहीं है। इसकी गिनती उन पड़ोस में होती है जिन्हें कभी भी पुनर्निवेश प्राप्त नहीं होता है। स्वास्थ्य परिणामों में नीतियां लिखते समय किस पर विचार किया गया और किस पर नहीं, इसके आधार पर आते हैं। धन का अंतर जो पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है क्योंकि पूंजी निकाल ली गई और कभी वापस नहीं आई। सांस्कृतिक उन्मूलन में एक समुदाय के योगदान का जश्न मनाया जाता है जबकि समुदाय स्वयं हाशिए पर रहता है। लागत भी मनोवैज्ञानिक है। यह महसूस करने में विशेष दुहक होता है कि आप किसी चीज के प्रति वफादार रहे हैं, टोपी आपके अस्तित्व के प्रति उदासीन थी। वह दुहक जायज है, यह महसूस करने लायक है, लेकिन यह स्थायी निवास नहीं बनना चाहिए। दुहक जब यह हमारे अंदर से गुजरता है तो स्पष्टता बन सकता है, और स्पष्टता सामूहिक कार्रवाई की शुरुआत है। वास्तव में समर्थन करने का क्या मतलब है? किसी ऐसी चीज का समर्थन करना जो आपका समर्थन करती है, इसका मतलब पूर्णता की मांग करना नहीं है। इसका अर्थ है पारस्परिकता की मांग करना। इसका मतलब यह पूछना है कि क्या आप जिन संरचनाओं में भाग लेते हैं, जिन कंपनियों को आप वित्त पोषित करते हैं, जिन आंदोलनों को आप बढ़ाते हैं, जिन नेताओं को आप ऊपर उठाते हैं, जिन प्रणालियों का आप बचाव करते हैं, क्या वे वास्तव में उन लोगों के प्रति जवाबदेह हैं जो उन्हें बनाए रखते हैं? इसका मतलब है अंदर की ओर उतना ही निर्माण करना जितना बाहर की ओर, एक दूसरे में निवेश करना, जहां आप कर सकते हैं उन समुदायों के भीतर संसाधनों को प्रसारित करने का चयन करें जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से अपने संसाधनों को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होते देखा है बाहर। इसका मतलब यह समझना है कि सामूहिक शक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरा नहीं है, यह इसकी नींव है। इतिहास में सबसे स्वतंत्र व्यक्ति हमेशा सामूहिक संघर्ष के कंधों पर खड़े रहे हैं। ईमानदार हिसाब किताब का आह्वान, यह संशयवाद का आह्वान नहीं है, यह स्पष्टता का आह्वान है। आप अपने स्वयं के हाशिए पर रहने के लिए, धन जुटाने के लिए बाध्य नहीं हैं। आप उन प्रणालियों का बचाव करने के लिए बाध्य नहीं हैं जिन्हें आपकी व्ययशीलता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। आप मरे हुए घोड़े को कोड़े मारने के लिए बाध्य नहीं हैं, जबकि आपका समुदाय आपके द्वारा बर्बाद की जा रही ऊर्जा के लिए भूखा है। लेकिन आप हम हैं एक दूसरे के प्रति बाध्य हैं। हम कठिन प्रश्न एक साथ पूछने के लिए बाध्य हैं। हमारी सामूहिक शक्ति को इरादे से पुनर्निर्देशित करना, धैर्य को प्रगति समझने की भूल करना बंद करें, उत्तरजीविता को समृद्धि के साथ भ्रमित करना बंद करें, क्योंकि यह सत्य है कि किसी भी हद तक व्यक्तिवाद को मिटाया नहीं जा सकता। हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं। एक समुदाय की पीड़ा शांत नहीं होती। एक आवाज को खामोश करने से सारी आवाजें कम हो जाती हैं। एक समूह से धन का दोहन पूरे समूह को दरिद्र बना देता है, और समान रूप से एक की मुक्ति सभी को मजबूत करती है। एक समुदाय के उत्कर्ष में निवेश से ऐसी लहरें पैदा होती हैं जो जितना हम देख सकते हैं उससे कहीं अधिक दूर तक पहुंचती हैं। प्रश्न जो बना हुआ है, इसलिए अपने आप से पूछें, केवल एक व्यक्ति के रूप में बल्कि अपने से भी बड़ी किसी चीज के सदस्य के रूप में, मैं किसका समर्थन कर रहा हूं? क्या यह मेरा समर्थन करता है? क्या यह हमारा समर्थन करता है? और यदि ईमानदार उत्तर नहीं है, तो सबसे शक्तिशाली, सबसे साहसी, सबसे प्रेमपूर्ण चीज जो आप कर सकते हैं वह है उस मरे हुए घोड़े को कोड़े मारना बंद करना, पीछे मुड़ना और उसी भयंकर ऊर्जा को किसी चीज में डालना। और कोई जो ऐसा करेगा, हम अकेले नहीं जीतते, हम अकेले नहीं पड़ते, हम एक साथ उभरते हैं या हम एक साथ कम हो जाते हैं। हमारी सामूहिक शक्ति को कहाँ रखा जाए, इसका चुनाव शायद अब तक का सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है। बुद्धिमानी से चुने, एक साथ चुने। मेरे सबसे प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए शांति, स्वास्थ्य, खुशी और समानता की कामना करता हूँ। अपने और दूसरों के प्रति दयालु बने। उसके बारे में कैसा है?